पृष्ठ संख्या 13, अध्याय 2, ताल और ठेका। संगीत का प्रस्तुतिकरण काल के विशिष्ट खंडों में रचा हुआ होता है, बधा हुआ होता है। यह प्रस्तुतिकरण शिथिलता के साथ कभी नहीं किया जाता। यदि एकाध प्रस्तुतिकरण एक नियत कालखंड के आकार में बांधा गया हो, जैसे 10 मात्राओं का कालखंड, तो उक्त संपूर्ण प्रस्तुतिकरण में वह 10 मात्राओं का कालखंड अविरत रूप में और अखंडता के साथ दर्शाया जाता है। फलतः वह सांगीतिक रचना उक्त कालखंड के एक रूप हुई होती है। निश्चित किए हुए इसी कालखंड को ताल कहते हैं। ताल की कुछ शास्त्रकारों की व्याख्याओं की ओर हम एक दृष्टिपात करें। शंभोः उत्पद्यते नादो, नादात् उत्पद्यते मनः, मनसो जायते कालः, स कालः तालसंज्ञकः। भरत कल्पलता मंजरी से। तकारः शंकर, प्रोक्तो लकारः पार्वती स्मृतः, शिव शक्ति समायोगा ताल इत्य अभिधीयते। शिव जी के तांडव नृत्य से ता की और पार्वती जी के लाश्य की ध्वनि से लकार की निर्मिति हुई। इस प्रकार शिव और शक्ति के संयोग से ताल की संकल्पना एवं ताल शब्द बना। प्राचीन काल के ज्येष्ठ भाष्यकारों के लिए संगीत आध्यात्मिक उन्नति एवं ईश्वर प्राप्ति का एक साधन होने के कारण उस जमाने में संगीत की प्रत्येक क्रिया ईश्वर से जोड़ने की प्रवृत्ति थी। शुरू में गायक या नर्तक अपनी कला के प्रस्तुतिकरण के समय अपने ही हाथों से हस्ताभिनय एवं ताली की सहायता से हस्तक्रिया से ताल बताकर उस ताल में अपनी कला को प्रस्तुत किया करते थे। आगे चलकर जब यह गाना प्रगल्भता के साथ प्रस्तुत होने लगा, तब अपने ही हाथ से ताली बजाकर गाना कठिन होते देखकर ये गायन क्रियाएं अधिक एकाग्रता से पेश हो सकें, इसलिए ताली देने वाले किसी दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति करने की प्रथा शुरू हो गई होगी। पृष्ठ संख्या 14। संस्कृत भाषा में तल धातु का अर्थ स्थिरता से स्थापित करना है। संगीत में यह कार्य ताल करता है। ताल शब्द का अर्थ है हथेली। दोनों हथेलियों पर परस्पर आघात करने से जो ध्वनि पैदा होती है उसे ताली कहते हैं। ताल क्रिया को हाथ की ताली और हाव भाव से दिखाने की प्रथा है। शास्त्रकारों ने उसके बारे में नियम निर्धारित किए हैं। संक्षेप में ताल का उद्देश्य संगीत प्रकारों को स्थिरता के साथ स्थापित करना है और यह उद्देश्य साध्य हो रहा है या नहीं यह दिखाने का काम ताली और अन्य नियोजित हस्तक्रियाएं संपन्न किया करते हैं। इसमें से कुछ हस्तक्रियाएं ध्वनि पैदा करने वाली सशब्द होती हैं, तो कुछ ध्वनि स्तब्धता के रूप में निःशब्द की जाती हैं। विविध विद्वानों द्वारा किए गए ताल के कुछ वर्णनों में हस्तक्रियाओं का उल्लेख है, तो अन्य वर्णनों में नहीं है। शास्त्रकारों का उद्देश्य संभवतः ताल यानी क्या यही बताना रहा होगा, इसीलिए वे ताल को कैसे व्यक्त किया जाए इसके विषय में भाष्य करना नहीं चाहते थे। आशयपूर्ण एवं संगीत से संबंधित ताल की विशेषता व्याख्याएं नीचे दी गई हैं। पहला, गीत वाद्य एवं नृत्य जिसमें प्रतिष्ठित होता है उसे ताल कहते हैं। यहाँ प्रतिष्ठा का अर्थ व्यवस्थित करना, आधार देना या स्थिरता प्राप्त करना है, संगीत रत्नाकर से। दूसरा, तालह काल क्रिया मनम लय, अर्थात काल क्रिया के मान को ताल कहते हैं, अमरकोश श्लोक संख्या 209 से लिया गया है। तीसरा, संगीत के गायन वादन और नृत्य की लंबाई नापने का साधन ही ताल है। उपर्युक्त व्याख्याओं में हस्त क्रियाओं के बारे में उल्लेख नहीं है, किंतु हस्त क्रियाएं ताल व्यक्त करने के लिए आवश्यक होने से कुछ विचारवान विद्वानों ने ताल की सुधारित व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं, जो इस प्रकार हैं। संगीत चिंतामणि में दिया गया है, ताल का शब्दार्थ है हाथ से आघात देना अथवा उंगलियों को सिकोड़कर या फैलाकर विधित करना। ताल समय का ऐसा बाँट अथवा पैमाना है जिसके अनुसार गायन वादन या नृत्य की क्रिया की जाती है। जिस प्रकार कविता के लिए पिंगल होता है, उसी प्रकार संगीत का पिंगल ताल है। संगीत प्रकाश सुखदेव नारायण सिन्हा के द्वारा उल्लिखित है। संगीत के लयबद्ध काल प्रवाहों के मापनों की विशिष्ट एवं सुसंगत रचना ही ताल है। ताल की व्याख्या यूं की जा सकती है, ह्रस्व दीर्घादि से युक्त सशब्द या आघात युक्त एवं निःशब्द या अनाघात क्रिया के फल स्वरूप संगीत रचनाओं का काल नापने वाला घटक। पंडित अरविंद मूलकावकर के द्वारा संगीत रचना के प्रस्तुतीकरण में काल को नापने का एकक ताल है और ताल को नापने का एकक ही मात्रा है, किंतु केवल मात्रा संख्याओं से ताल रचना को आकार प्राप्त नहीं होता, वह आकार निर्माण होता है मात्रा समूहों के नियोजित खंडों के द्वारा ही। उपर्युक्त सभी व्याख्याओं को ध्यान में रखकर ताल की ऐसी शास्त्रीय व्याख्या करना आवश्यक है जो विद्यार्थियों के लिए आज उपयुक्त है। वह व्याख्या इस प्रकार होगी, गायन वादन एवं नृत्य इन तीनों संगीत प्रकारों की रचनाओं को स्थिरता के साथ स्थापित करने के लिए सशब्द और निःशब्द क्रियाओं द्वारा निर्मित सुनिश्चित खंडबद्ध एवं मात्राबद्ध काल रचना को ताल कहते हैं। ठेका, ताल के संपूर्ण वर्णन के उपरांत भी प्रत्यक्ष अनुभव के जरिए हमें यह ज्ञात होता है कि ताल की कल्पना अमूर्त है। पृष्ठ संख्या 15, ताली से व्यक्त होने के कारण उसे ताल कहा जाता है, किंतु जब ताल को वाद्य पर व्यक्त करने का प्रश्न उठता है तब वह वाद्य पर निकलने वाली आघात ध्वनियों के माध्यम से ही व्यक्त होता है। ताल रचना को जब ताल वाद्य पर दर्शाया जाता है तब उसे ताल का ठेका कहते हैं। रचनाओं ने ताल की लंबाई के अनुसार खंडबद्ध जोरदार एवं बिन जोरदार अपेक्षित रस निर्मिति हो ऐसे शब्द ठेके के लिए चुने हैं। फलतः ठेका यानी सुनिश्चित सुनियोजित और मान्यता प्राप्त तबला पखावज पर किए गए आघातों से निर्मित शब्दों अक्षरों से ताल स्वरूप व्यक्त करने वाली एक अवर्तनीय शुद्ध मूल रचना कृति है। ताल निर्मिति के तत्व सिद्धांत, ताल को एक स्वतंत्र रूप प्राप्त हो चुका है। प्रत्येक ताल का व्यक्तित्व अथवा उसकी सूरत अलग ही होती है। तालों का सूक्ष्मता के साथ अध्ययन किया जाए और उनका शास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण किया जाए तो यह बात ध्यान में आती है कि ताल निर्मिति के कुछ अलिखित नियम हैं, कुछ संकेत हैं। पृष्ठ संख्या 16, तालों की निर्मिति संभवतः संगीत के प्रस्तुतिकरण में विविधता पैदा हो इस उद्देश्य से हुई होगी तथा काव्य के भिन्न भिन्न वृत्त छंद आदि के अनुरूप ताल निर्माण हुए होंगे। विविध काव्यों के आशय एवं भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भिन्न भिन्न आकार के तालों की निर्मिति की जरूरत महसूस हुई होगी तथा उसके परिणाम स्वरूप नए ताल पैदा हो गए होंगे। ऐसे विभिन्न तालों का अध्ययन करने पर जो कोई निर्मिति तत्व दृष्टिगोचर होते हैं वे इस प्रकार हैं। पहला, मात्रा विचार। गायन के माध्यम से विविध रस निर्मिति हो यही गायक का मुख्य उद्देश्य होता है। ऐसी विविध रस निर्मिति के लिए विभिन्न मात्रा संख्याओं के ताल पोषक सिद्ध होते हैं। गंभीर निर्मिति और शांत रस की निर्मिति के लिए अधिक मात्राओं का ताल ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। श्रृंगार निर्मिति के लिए छोटी मात्रा संख्याओं के ताल अधिक परिणामकारक साबित होते हैं। दूसरा, ताल विभाजन खंड। ताल का व्यक्तित्व केवल उसकी मात्रा संख्या से निर्माण नहीं होता। ताल में सिद्ध किए हुए जो खंड होते हैं उनसे ताल के अलगपन की प्रतीति होती है। इन खंडों का आकार दो मात्राओं से लेकर पांच मात्राओं तक किया गया पाया जाता है। यह भी नियम नहीं है कि ये खंड समान मात्राओं के ही होने चाहिए। किम बहुना एक ताल में विविध मात्रा संख्याओं के खंडों को रचने से उस ताल का अलगपन विशेष तौर पर महसूस होता है। उदाहरण के लिए धमार ताल को देखें तो उसके खंड 2, 5, 3, 4 ऐसी विविध मात्राओं से बने हैं। इन खंडों की योजना ताल का निर्माण एवं नियंत्रण करने वाले शास्त्रकारों के द्वारा की गई होती है। तीसरा, ताली खाली विचार। पुराने शास्त्रकारों की मान्यता है कि केवल 10 मात्राओं का ताल झप ताल नहीं बल्कि 2, 5 और 3 मात्रा कालों के तीन खंडों को मिलाकर रचा गया ताल ही झप ताल है, किंतु 5 मात्राओं का काल संभवतः गायन क्रिया के दौरान गणना के लिए असुविधाजनक लगा होगा और गणन क्रिया आसान होने के दृष्टि से उक्त 5 मात्राओं के काल को 2 खंडों में विभाजित किया गया होगा। फलतः ये 2 मात्रा खंड 3 और 2 मात्राओं के किए गए। अतः झप ताल को 2, 5, 3 ऐसे 3 खंडों का दिखाने के बदले 2, 3, 2, 3 ऐसे 4 खंडों का दिखाया जाने लगा। किंतु झप ताल अगर 4 तालियों से व्यक्त होने लगा तो उन तालियों से सम को पहचानना कुछ कुछ झंझट पैदा करने वाला लगने से 2 मात्राओं के तीसरे खंड का प्रदर्शन ताली से न करके हाथ को दूर हटाकर निःशब्द क्रिया से किया जाने लगा होगा। पृष्ठ संख्या 17। हाथ को दूर हटाने की इस क्रिया को आगे चलकर खाली काल का अभिधान प्राप्त हुआ होगा। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि ताली या खाली की क्रिया हर एक खंड की पहली मात्रा पर दिखाना निश्चित किया गया है। ताल गिनने की वर्तमान पद्धति के अनुसार खंड की पहली मात्रा को ताली या खाली से व्यक्त करने के बाद शेष मात्राओं को उंगलियों से गिनने की पद्धति आरंभ हुई और खाली क्रिया से दिखाई जाने वाली अगली मात्राएं भी उसी पद्धति से उंगलियों से गिनी जाने लगी। हस्तक्रियाओं के द्वारा तालों की लय को पक्केपन के साथ स्थिर रखा जाता है। विशेषतः धीमी गति के ताल की लय हिल न जाए, इसलिए खंडों की मात्राएं पक्के तौर पर उंगलियों से गिनने की क्रिया दृढ़ हो गई। दस दस प्राण में किए गए वर्णन के अनुसार ये क्रियाएं सशब्द या निःशब्द हैं, किंतु आज के संगीतकार काल दिखाने के लिए अत्यंत अचूकता के साथ हस्त क्रियाओं का प्रदर्शन विधिवत करते हैं, ऐसा कह नहीं सकते। संक्षेप में खंड यानि ताल रचना के मात्रा विभाग हैं और वे सशब्द या निःशब्द से व्यक्त किए जाते हैं। ताली, प्रत्येक खंड की पहली मात्रा ताली से व्यक्त की जाती है और उस मात्रा को ताली का स्थान कहते हैं। काल, ताल का जो स्थान हाथ को दूर हटाने की क्रिया से व्यक्त होता है उसे काल कहते हैं। यह स्थान भी ताली की ही तरह खंड की पहली मात्रा ही होती है। सम, ताल की पहली मात्रा को सम कहते हैं, किंतु लयानुरूप मात्रा की लंबाई छोटी बड़ी हो सकती है, फलतः पहले मात्रा काल में कहीं भी ताली बजाई जाए तो उसे सम नहीं कहा जा सकता, अतः ताल के आरंभ बिंदु को सम कहते हैं, ऐसा विधान करना अधिक उचित है। ताल को वर्तूलाकार माना जाता है, फलतः सम ताल का आरंभ बिंदु होती ही है, साथ ही वह ताल का केंद्र बिंदु भी होती है। पृष्ठ संख्या 18, ठेका और उसके लक्षण। हमने पहले देखा ही है कि ताल अमूर्त है और उसका मूर्त रूप ठेका होता है। संगीत के संपूर्ण प्रस्तुतिकरण में हम कानों से जो सुनते हैं वह ठेका है। ठेके में ताल निहित होता है। जिस प्रकार ईश्वर निर्गुण निराकार है वैसा ही ताल भी है। ताल का सगुण साकार रूप ही ठेका है। जिस प्रकार भगवान की मूर्ति आँखों से देखी जा सकती है उसी प्रकार ठेका भी कान से सुना जा सकता है। आज का संगीत का प्रस्तुतिकरण ठेके पर आधारित है, अतः जिस प्रकार हमने ताल के लक्षण देखे वैसे ही ठेके के लक्षण भी देखें। अर्थात यह कहना जरूरी नहीं कि ताल के लक्षण तो ठेके के लक्षण हैं ही। शब्दाक्षरों का चुनाव, ठेके के लिए अक्षर या शब्द चुनना एक अत्यंत कठिन वैचारिक प्रक्रिया है। ठेका संभवतः यह सोचकर बांधा जाता होगा कि उसे किस गायन प्रकार के साथ संगत के लिए बजाना है। शांत रस, करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस और भक्ति रस की निर्मिति के लिए तबला पखावज के विविध अक्षर बंद या खुले स्वरूप में अधिक प्रभावकारक होते हैं। फलतः उन विविध रसों की निर्मिति को ध्यान में रखकर गंभीर, कोमल, चंचल प्रकृति के अक्षरों को चुना जाता है। ध्रिपद धमार जैसी गंभीर गायकी के लिए खुले अक्षरों का चौताल या धमार रचा गया। चंचल और श्रृंगारिक भाव के लिए किनार पर से गूंज युक्त अक्षर जिसमें प्राधान्य के रूप में होते हैं और जो ताल आकार में छोटे होते हैं, ऐसे कहरवा, दादरा जैसे तालों के ठेके निर्माण किए गए। दूसरा, खाली भरी। ताल रचना की ताली खाली संकल्पना का प्रभाव ठेके के खंडों के अक्षर चुनाव पर पड़ना स्वाभाविक ही था और इसका परिणाम ठेके के ताली युक्त और खाली युक्त खंडों के शब्दाक्षरों के चुनाव पर हुआ दिख पड़ता है। ठेकों की रचना में योजनाबद्धता के साथ बाएं के घुमारे गूंज का और बाएं विरहित अक्षरों का कलात्मक चुनाव किया जाता है। शब्दों एवं अक्षरों के चुनाव का यह अत्यंत कौशल का काम ठेके की निर्मिति के समय ठीक ढंग से संपन्न होना पड़ता है। तीसरा, लय का चुनाव। ताल ठेके की लय भी रस निर्मिति के लिए सहायभूत सिद्ध होती है। धीमी लय के ठेके शांत रस या करुण रस की निर्मिति के लिए उचित होते हैं। अतः जो ठेका धीमी लय में अपेक्षित है वहां प्रत्येक मात्रा में एक अक्षर की योजना की जाए तो वह ठेका कम प्रभावकारक साबित हो सकता है। पृष्ठ संख्या 19। ऐसी हालत में दो या चार अक्षर भी एक मात्रा काल में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके विपरीत द्रुत लय में एक मात्रा काल में एक ही अक्षर की योजना अधिक परिणामकारक सिद्ध होती है। बड़ा ख्याल गाने के लिए जिस समय एक ताल या तिलवाड़ा ठेकों का उपयोग किया जाता है उस समय अगर वह गायन अत्यंत धीमी लय में प्रस्तुत हो रहा हो तो तबला वादन के लिए सुयोग्य अक्षरों से ठेका भरी के तंत्र से ठेका बजाना पड़ता है और वह वैसा बज जाए तभी वह गायन अधिक परिणामकारक प्रतीत होता है। संभवतः विलंबित लय में इन दो ठेकों के अंतिम अक्षर परिणामकारकता के तत्व को ध्यान में रखकर न चुने गए हों ऐसा महसूस होता है। संगीत की प्रभावात्मकता के लिए ताल क्रिया का योगदान। गायन, वादन और नृत्य तीनों के योग से संगीत बनता है। इन तीनों कलाओं की बुनियादी क्रियाएं हैं लय और ताल। कुछ लोगों की राय में लय और ताल के कारण संगीत के समर्थ प्रस्तुतिकरण में रुकावटें या प्रतिबंध पैदा होते हैं। आलाप या तान की क्रियाओं को पूर्ण करने के बाद जिस मात्रा से बंदिश का मुखड़ा लेकर सम पर आना है वह मात्रा अगर तान क्रिया के अंत में पकड़ी न जा सके तो निरस्ता पैदा होती है और उस तान का प्रभाव निकल जाता है। इसीलिए अनेक कलाकारों के लिए ताल असुविधाजनक प्रतीत होता है। ताल के अस्तित्व के कारण कुछ कलाकार पशुपेश में पड़ जाते हैं। गाने का उनका आत्मविश्वास कम होता है। उन्हें लगता है कि राग के प्रस्तुतिकरण में इतनी क्षमता है कि ताल का अस्तित्व गौण है और उसके अस्तित्व के कारण राग की कल्पना मुक्त प्रस्तुतिकरण में बाधा पैदा होती है। किराना घराने के कुछ कलाकार कहा करते थे, ताल गया तो बाल गया, लेकिन सुर गया तो सिर गया। उपर्युक्त वाक्य प्रचार यद्यपि संगीत में सुरों के महत्व को यथोचित रूप में समझा देता हो तो भी मेरी राय में उसमें ताल की शक्ति को बहुत ही गौण माना गया है। संगीत का मुख्य उद्देश्य सौंदर्य एवं आनंद निर्माण करना है, किंतु हमें यह बात ठीक ध्यान में रखनी चाहिए कि राग शक्ति का विलास ताल और लय पर निर्भर है। जमीन पर अगर हमने बाल्टी भर पानी उड़ेल दिया तो वह सब दिशाओं में फैलता जाता है, किंतु यही पानी अगर हमने विविध कलात्मक आकार के बर्तनों, चषकों, गागर आदि में भर दिया तो उसी पानी को कलात्मक बर्तन का आकार प्राप्त होता है। पृष्ठ संख्या 20। और बर्तनों के विभिन्न आकारों के कारण बर्तन का वह पानी दर्शनीय हो सकता है, क्योंकि उन बर्तनों के कारण ही उस पानी को सुंदर आकार प्राप्त हुआ होता है। उस बर्तन की गढ़न यद्यपि पानी के स्वैर रूप में विहार करने की क्रिया में बाधा पैदा करती हो तो भी उसी समय वह गढ़न पानी को कलात्मक एवं मनमोहक आकार भी दिया करती है। संगीत के प्रस्तुतिकरण में भी ताल, ठेका उन संगीत प्रकारों को एक विशिष्ट चौखट के रूप में आकार दिया करता है और उस क्रिया को संगठित किया करता है। किसी भी कला का या क्रीड़ा से मिलने वाला आनंद अथवा उसे प्राप्त होने वाला अस्तर उसके लिए निर्धारित नियमों एवं बंधनों से प्राप्त होता है। और बढ़ता है। उदाहरण, प्रत्येक राग के वादी और संवादी स्वर होते हैं, आरोह और अवरोह होते हैं, उसके नियम होते हैं, साथ ही उस राग का खास चलन भी होता है। राग के प्रस्तुतिकरण में इन सब नियमों का अवलंबन करने के कारण ही वह राग सुनते समय हमें एक महसूस होता है कि वह राग शुद्ध स्वरूप में गाया जा रहा है और इसके कारण सौंदर्य पैदा हो रहा है। आलाप, तान, क्रिया एवं लयकारी, यह सब करते समय यह बंधन गायकों पर होता है कि राग का शुद्ध स्वरूप कायम रहना चाहिए। टेनिस, बैडमिंटन या क्रिकेट जैसे हर एक खेल की अपनी एक नियमावली होती है। खेल कैसे खेला जाए और कैसे न खेला जाए, इस संबंध में सूचनाएं तथा प्रतिबंध इस नियमावली में निहित होते हैं। टेनिस के खेल में बेशुमार वेग से मंत्रमुग्ध करने वाली की गई सर्विस अगर निर्धारित रेखा के थोड़ी सी भी बाहर हो तो उस सर्विस को अवैध करार दिया जाता है। ऐसे नियमों से टेनिस खेल की शक्ति और स्तर बढ़ा और उस संबंध में लोगों का आकर्षण बढ़ गया। सूत के एक धागे भर रेखा के बाहर सर्विस की जाए तो उसे बाल गया नहीं माना जाता। सभी खेलों के नियमों का अगर अध्ययन किया जाए तो हमारे ध्यान में यह बात आ जाएगी कि नियमों से निर्मित प्रतिबंधों के कारण ही किसी भी खेल का सौंदर्य और आकर्षण बढ़ गया है। संगीत के प्रस्तुतिकरण में लय, ताल आदि के बंधन गायकों एवं वादकों को अधिक सक्षम बनाने के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। एकाध बेहिसाबी तान रचना के रूप में यद्यपि अच्छी हो तो भी वह विशेष प्रभावी होगी ही, सो बात नहीं, किंतु अगर वही तान संबंधित ताल में योजनापूर्वक और मुखड़े से पहले की मात्रा पर पूर्ण होने वाली हो तो उस तान के बाद मुखड़ा लेकर आने वाली सम का आनंद अनोखा होता है। ताल और लय के कारण तान क्रिया को संबद्धता एवं आकर्षण आकार प्राप्त होता है। ताल की चौखट में हुक्मी तान क्रिया प्रस्तुत करने के रियाज के माध्यम से कलाकारों का कौशल तथा आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। पृष्ठ संख्या 21। ताल के खंडों और खाली भरियों का अध्ययन करके अगर तान क्रिया को खंडानुरूप बनाया जाए तो वह प्रस्तुतिकरण अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार के रियाज की प्रक्रिया से गायन को एक अनुशासन प्राप्त होता है और अपनी निजी शैली निर्माण होती है। ताल और लय के बंधनों के सहारे रियाज करते करते कलाकार की ताल पर की पकड़ पक्की होने पर या विविध स्वर लयाकृतियां निर्माण करने का उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और वैसी नई नई कलाकृतियां प्रस्तुत करने का शौक उसमें पैदा होता है। ऐसे प्रस्तुतिकरण से वह श्रोताओं को उच्च स्तर का आनंद प्राप्त करा देता है और ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर उसे उच्च स्तर का समाधान प्राप्त होता है। कलाकार के आत्मविश्वास पर उसकी कला की प्रभावात्मकता काफी अंशों में निर्भर होती है। गायक का अगर सुर, लय और ताल पर अच्छा प्रभुत्व हो तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, जिससे उसकी कला का प्रस्तुतिकरण निश्चय ही प्रभावी होता है। संक्षेप में हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि लय और ताल दोनों संगीत के प्रस्तुतिकरण के अत्यंत महत्वपूर्ण अंग हैं, जिनके अभाव में संगीत नीरस एवं चैतन्यहीन होगा।